पूर्व पाठ में जो ये सिद्धांत बताया गया था कि द्रव्य प्रथम क्षण में निर्गुण उत्पन्न होता है और द्वितीय क्षण में उसमें गुण उत्पन्न होता है, माने रूपादि उत्पन्न होता है। इस पर दो दोष दिए गए। पहला दोष ये था कि उसमें अचाक्षुषत्व की आपत्ति होगी, माने वह आँख से जो है ना दिख नहीं पाएगा, जबकि जो द्रव्य होता है वह दिखता ही दिखता है, तो अचाक्षुषत्व नहीं होना चाहिए, उसमें अचाक्षुषत्व आ जाए। दूसरा दोष ये दिया कि वह द्रव्य होता है, जब घट उत्पन्न लेता है ना उसको द्रव्य बोला जाता है, लेकिन अब उसको हम द्रव्य नहीं कह पाएंगे, क्योंकि द्रव्य का लक्षण है गुणाश्रयो द्रव्यम, मान जो रूपादि गुण का आश्रय हो उसे द्रव्य कहते हैं। तो आप प्रथम क्षण वाले घट में जब रूप आदि मानते ही नहीं है कि उसमें रूप होता है, तो वो गुणाश्रय नहीं कहलाएगा, द्रव्य नहीं कहलाएगा। इस तरह से अचाक्षुषत्व की आपत्ति और अद्रव्यत्व की आपत्ति, ये दो आपत्तियां जो है ना दी गई थी सिद्धांत में। अब उसका जो है ना ये न्याय दर्शन वाले जवाब देते हैं, कहते हैं कि सत्यम कि आपकी आपत्ति जो है अपने जगह सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन आपत्तियों का समाधान नहीं हो सकता। अब समाधान कर रहे हैं कि प्रथमे क्षण घटो यदि चक्षुषा न गृह्यते तदा कानो हानि, ताकि प्रथम क्षण में अगर घड़ा नहीं भी दिखता है तो अपनी इसमें कोई हानि नहीं है। क्यों नहीं हानि है? क्योंकि द्वितीय क्षण में, तृतीय क्षण में, बाद में वह तो दिखेगा ही दिखेगा, प्रथम क्षण में नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा। न ही सगुणोत्पत्ति पक्षेपी निमेषावसरे घटो गृह्यते। ऐसा है कि ये न्याय दर्शन वालों का मत है कि प्रथम क्षण में निर्गुण द्रव्य की उत्पत्ति होती है, लेकिन अन्य भिन्न दर्शन में जो है सगुण द्रव्य की उत्पत्ति मानी गई है। तो कहा कि जिस दर्शन में सगुण उत्पत्ति मानी गई है, मानी एक ही समय में घट भी उत्पन्न होता है और घट में रूप भी उत्पन्न होता है, समकालीन उत्पन्न होता है, उनके मत में भी मान लीजिए कि उसी समय में आप आँख की पलक गिर जाए, तो आँख की पलक अगर गिर जाए तो भी जो है ना घट का चाक्षुष नहीं हो पाएगा, घट जो है ना नहीं दिख पाएगा। तो लेकिन फिर जब पलक उठेगी तब तो दिखेगी ना। तो अगर एक क्षण में घड़ा जो है नहीं भी दिखता है तो कोई आपत्ति नहीं है। वो तो जो सगुण उत्पत्ति मानते हैं उनके मत में भी जब निमेषावसर होगा, जब पलक गिर जाएगी, तब उनके मत में भी घड़ा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से अगर प्रथम क्षण में घड़ा नहीं दिखता है तो कोई हानि नहीं है। यही पंक्ति में देखिए, न ही सगुण उत्पत्ति पक्षे भी, न्याय दर्शन वाले जो है ना ये निर्गुण उत्पत्ति पक्ष वाले हैं और इससे भिन्न दर्शन वाले सगुण उत्पत्ति पक्ष वाले हैं। कहा कि सगुण उत्पत्ति पक्ष में भी अगर निमेश अवसर हो जाए, निमेश का अवसर आ जाए, निमेश मतलब पलक, पलक का अवसर आ जाए माने पलक गिर जाए, तो घटो न गृह्यते, तो घट को जो है ना नहीं देखा जाता है। तेन व्यवस्थितम एतत् निर्गुण एव प्रथम घट उत्पद्यते। तो जब सगुण उत्पत्ति पक्ष में भी अगर निमेषावसर हो जाता है तो घट नहीं दिखता है, तो निर्गुण उत्पत्ति पक्ष में भी अगर एक क्षण के लिए घड़ा नहीं दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए व्यवस्थितम एतत्, इसलिए यह सिद्धांत व्यवस्थित है कि निर्गुण एव प्रथम घट उत्पद्यते, सर्वे से पहले निर्गुण ही घट जो है उत्पन्न होता है। द्वितीयादि क्षणेशु चक्षुषा गृह्यते, अद्वितीय तृतीय आदि क्षण में जो है वह चक्षुष के द्वारा उसका ग्रहण किया जाता है। अब इन्होंने जो आपत्ति दी थी ना कि इसमें यह द्रव्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि द्रव्य का लक्षण है गुणाश्रय द्रव्यम, अगुण मतलब है रूप आदि, तो रूप आदि का जो आश्रय हो माने रूप आदि जिसमें रहता हो वह द्रव्य है। तो प्रथम क्षण वाले घट में रूप आदि नहीं रहता है निर्गुण उत्पत्ति पक्ष में, तो वह द्रव्य नहीं कहलाएगा। ये जो उन्होंने आपत्ति दी थी उसका जवाब दे रहे हैं कि कहते हैं कि न च प्रथमे क्षणे गुणाश्रयत्वाभावात् अद्रव्यत्वापत्ति, कि आपने जो कहा कि प्रथम क्षण में गुण आश्रय का अभाव है इसलिए उसमें अद्रव्यत्व की आपत्ति आएगी, माने वह द्रव्य नहीं कहला पाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रव्य का दूसरा लक्षण जो है ना वो चला जाएगा। वो क्या है दूसरा लक्षण? समवायि कारणम द्रव्यम, जो समवायी कारण होता है वह द्रव्य होता है। यह जो द्रव्य का लक्षण है यह तो उस प्रथम क्षण वाले घट में चला ही जाएगा, प्रथम क्षण वाले पट में चला ही जाएगा, क्योंकि वह जो प्रथम क्षण वाला जो घट है वह समवायी कारण है। किसका? तो घट रूप का समवायी कारण है। प्रथम क्षण वाला जो पट है वह भी समवायी कारण है। किसका? पट रूप का समवायी कारण है। तो जो जो समवायी कारण होता है वह द्रव्य होता कहलाता है। ये वाला लक्षण तो प्रथम निर्गुण उत्पत्ति पक्ष में भी लक्षण उस प्रथम क्षण वाले घट में चला जाएगा। तो ये जो आपने दोष दिया था कि वह अद्रव्यत्व की आपत्ति होगी, वह अद्रव्य हो जाएगा, ये आपत्ति सही नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप जिद पर अड़ जाएं कि नहीं, हम गुणाश्रयो द्रव्यम वाला लक्षण ही मानते हैं और वह गुण का आश्रय नहीं है इसलिए द्रव्य नहीं कहलाएगा, तो ऐसा है कि उसमें गुणाश्रयो द्रव्यम के बदले गुणाश्रय योग्यम द्रव्यम ऐसा लक्षण कर लीजिए कि जो जिसमें गुण के आश्रय होने की योग्यता है वह द्रव्य कहलाता है। और ऐसा लक्षण का परिष्कार कर देने पर, लक्षण का परिष्कार होता है ऐसा है ना, जब लक्षण कोई बनाते हैं और उस लक्षण में अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष सब आने लगते हैं तो उसका परिष्कार किया जाता है, माने उस लक्षण में किसी शब्द को जोड़ दिया जाता है, किसी शब्द को निकाल लिया जाता है, इसको निवेश और प्रवेश कहते हैं। तो ये जो निवेश लक्षण में जो है ना, हम योग्यत्व का निवेश कर देंगे, गुणाश्रयो द्रव्यम ये जो लक्षण है उसको बना देंगे स्वरूप परिष्कार करके कि गुणाश्रय योग्यम द्रव्यम। अब ये गुण का आश्रय तो नहीं है प्रथम क्षण वाला घट, लेकिन गुणाश्रय की उसमें योग्यता है। क्यों योग्यता तो है ही, क्योंकि द्वितीय क्षण में वो गुण का आश्रय हो जाता है, तृतीय क्षण में वह गुण का आश्रय रहता ही है। तो इस तरह से गुणा परिष्कृत जो लक्षण है द्रव्य का, गुणाश्रय योग्यत्वम द्रव्यत्वम, ये लक्षण उसमें भी चला जाएगा, इसलिए वह द्रव्य कहलाएगा ही कहलाएगा, उसमें अद्रव्यत्व की आपत्ति नहीं होगी। तो कहा कि ये जो आपने योग्यता इसमें जोड़ दिया लक्षण में, ये योग्यता क्या होती है? तो कहा कि योग्यता च गुण अत्यंता भाव अभाव, ये अभाव जो है ना, इसके बारे में हम ये जो आपका पाठ्यांश है इस सेमेस्टर का सबसे लास्ट अभाव पर ही जाकर के खत्म होता है, तो उस समय में हम अभाव के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि ऐसा अभाव जो त्रैकालिक हो, जो हमेशा रहे, जैसे वायु में रूप का अभाव होता है, पहले भी वायु में रूप का अभाव था, अभी भी वायु में रूप का अभाव है और भविष्य में भी वायु में रूप का अभाव रहेगा, तो त्रैकालिक जो अभाव होता है उसको अत्यंत अभाव कहा जाता है। ठीक है, तो अत्यंताभाव का जो अभाव है वही है योग्यता। अब जैसे गुणाश्रयो द्रव्यम कहते हैं कि जो गुण का आश्रय है वह द्रव्य है, तो तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान में जो गुण का आश्रय होगा वो द्रव्य, तीनों कालों में अगर कभी भी गुण का आश्रय नहीं होगा तो अद्रव्यत्व की आपत्ति आएगी, लेकिन प्रथम क्षण में माने वर्तमान क्षण में यदि वह गुण का आश्रय नहीं है लेकिन आगामी क्षण में अगर वह गुण का आश्रय हो जाएगा तो अत्यंताभाव का अभाव नहीं हुआ। ठीक है, तो जहाँ गुण अत्यंताभाव अभाव, गुण के अत्यंत अभाव का अभाव अगर है तभी जो है उसमें अद्रव्यत्व की आपत्ति आएगी। यहाँ जो क्या है कि प्रथम क्षण वाला जो निर्गुण घट है उसमें गुण का अभाव वर्तमान क्षण में तो है लेकिन गुण का अत्यंत अभाव नहीं है, क्योंकि द्वितीय तृतीय क्षण में तो उसमें गुण आ ही जाता है, गुण रहता ही है। तो इस तरह से जो इन्होंने दो आपत्ति दी थी, एक दी थी कि अचाक्षुषत्व की आपत्ति, माने चक्षु से उसका उसको हम नहीं देख पाएंगे, उसका इन्होंने खंडन ये कर करके किया कि अगर हम प्रथम क्षण में नहीं भी देख पाते हैं तो कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि सगुण उत्पत्ति पक्ष में भी अगर निमेषावसर होता है, पलक गिर जाती है, तो वहाँ पर भी जो है घट नहीं दिखता है प्रथम क्षण में, तो इसलिए प्रथम क्षण में नहीं दिखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी आपत्ति दी थी कि वह द्रव्य नहीं कहलाएगा क्योंकि गुण का आश्रय नहीं होगा, तो इसका जवाब दिया कि समवायि कारणम द्रव्यम, ये लक्षण मान लेंगे द्रव्य का, और चूंकि वह प्रथम क्षण वाला जो घट है वो भी समवायि कारण है घट रूप का, इसलिए वह द्रव्य कहलाया जाएगा इस लक्षण से। इस पर अगर कहा कि जिद पर अड़ जाए कि नहीं गुणाश्रय द्रव्यम ही लक्षण है और वह प्रथम क्षण वाला वट गुण का आश्रय नहीं है, तो इसका जवाब दिया कि इसमें परिष्कार करेंगे, गुणाश्रयो गुणाश्रय योग्यता यस्मिन तद्रव्यम, माने गुणाश्रय की योग्यता जिसमें है, इसी को गुणाश्रय योग्यत्वम द्रव्यत्वम भी कह सकते हैं, तो गुणाश्रय की योग्यता जिसमें है वह द्रव्य है। तो प्रथम क्षण वाला जो घट है भले इस समय गुण का आश्रय नहीं है लेकिन आगामी क्षण में गुण आश्रय की योग्यता उसमें है, इसलिए गुणाश्रय की योग्यता होने के कारण वह प्रथम क्षण वाला जो निर्गुण घट है वह भी द्रव्य कहलाएगा। कहा कि यह जो है गुणाश्रय योग्यता क्या होती है, कहा कि गुण का जो अत्यंता भाव का अभाव है वही गुणाश्रयत्व योग्यता है। इस तरह से समवायि कारण का जो प्रकरण था वो यहाँ पर संपन्न होता है। अब इसके बाद असमवायी कारण और निमित्त कारण के बारे में चर्चा की जाएगी। तो असमवायी कारण का के बारे में भी जो है ना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जितना अपने पास ऑडियो का समय है। कहते हैं कि असमवायी कारणम तत् उच्यते, माने असमवायी कारण उसको बोला जाता है यत समवायी कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम, यत समवायि कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम तत असमवायि कारणम। ये सुनने में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सुना आया होगा, अब इसको समझिए कि जो किसी कार्य के समवायि कारण में प्रत्यासन्न होता है, समवायि कारण प्रत्यासन्नम माने समवायि कारण में जो प्रत्यासन्न हो, प्रत्यासन्न मतलब विद्यमान, तो जो समवायि कारण में विद्यमान हो प्रत्यासन्न हो और अवधृत सामर्थ्य हो। अवधृत सामर्थ्य का मतलब क्या है, तो सामर्थ्य अवधृत मतलब होता है निश्चित और सामर्थ्य का अर्थ है यहाँ पर कारणत्व, तो अवधृत सामर्थ्य माने जिसमें निश्चित रूप से कारणत्व रहता हो, ठीक है। तो दो चीज़ें इन्होंने बताई कि जो कारण समवायी कारण में प्रत्यासन्न हो और जिसमें कारणत्व निश्चित रूप से रहता हो वह असमवायी कारण होता है। असमवायी कारण के लिए जो पहले लक्षण बताया उसमें क्या बोला था, कहा था कि जो जिस कारण में कार्य समवेत उत्पन्न होता है माने समवाय संबंध से उत्पन्न होता है वह कारण समवायी कारण होता है। असमवायी कारण का लक्षण क्या बताया कि जो समवायी कारण में विद्यमान हो और जिसमें निश्चित रूप से कारणत्व रहता हो वह असमवायी कारण कहलाता है। अब इसका उदाहरण दे दिया इन्होंने, यथा तंतु संयोगः पटस्य असमवायी कारणम्, पट का समवायी कारण तो तंतु है और असमवायी कारण जो है ना वह तंतु का संयोग है। जब सारे तंतु सारे सूत आपस में एक जुड़े से संयुक्त होंगे जुड़ जाएंगे तभी तो पट बनेगा ना, तो पट का समवायी कारण हुआ तंतु और असमवायी कारण हो गया तंतु संयोग। कैसे हुआ ये तंतु संयोग असमवायी कारण, तो इसको देखिए असमवायी कारण के लिए इन्होंने क्या शर्त रखी थी, दो शर्त रखी थी, एक तो समवायी कारण में उसको होना चाहिए, दूसरा अवधित सामर्थ्य होना चाहिए मान उसमें कारणत्व निश्चित रूप से होना चाहिए। तो अब देखिए पट का समवायी कारण कौन है, तंतु है, उस तंतु में ही तो तंतु संयोग विद्यमान है, तंतु संयोग कहाँ पर प्रत्यासन्न रहेगा, तंतु में ही प्रत्यासन्न रहेगा, तो यह जो तंतु संयोग है यह समवायी कारण प्रत्यासन्न होता है, माने पट का जो समवायी कारण तंतु है उस तंतु में यह तंतु संयोग प्रत्यासन्न है माने विद्यमान है। तो पहली शर्त इसमें चली गई। दूसरी शर्त थी कि अवधित सामर्थ्यम माने कारणत्व जो है निश्चित रूप से इसमें होना चाहिए, तो पट के प्रति तंतु संयोग में निश्चित रूप से कारणत्व है ही, अगर तंतु संयोग नहीं होगा तो पट भी नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से समवाय कारण में रहने वाला भी ये हो गया तंतु संयोग, और अवधृत सामर्थ्य भी हो गया, माने निश्चित रूप से इसमें कारणत्व भी है, इसीलिए तंतु संयोग जो होता है वह पट का असमवायी कारण होता है। आगे कहते हैं तंतु संयोगस्य गुणस्य पट समवायी कारणेषु तंतुषु गुणिषु समवेतत्वेन समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात् अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वेन पटम प्रति कारणत्वाच्च। ये जो मैंने सिखाया ना कि इसमें तंतु संयोग में ये दोनों चीजें जाती हैं इसलिए वह असमवायी कारण है, उसी बात को ये यहाँ पर विवेचित कर रहे हैं। कहते हैं कि तंतु संयोग क्या है, गुण है, रूप रस गंध स्पर्श संयोग वियोग ये सब जो है ना गुण कहलाते हैं। तो तंतु संयोग रूपी जो गुण है, तंतु संयोगस्य गुणस्य तंतु संयोग रूपी जो गुण है वह पट समवायी कारणेषु तंतुषु, पट का जो समवायी कारण कौन है, तंतु है, वहां पर तंतु जो है ना गुणी है। ऐसा है कि तंतु संयोग गुण हो गया और तंतु जो है वह गुणी हो गया। असल में जो दो पदार्थ को लेंगे ना उसमें ये निर्णय किया जाता है कि कौन गुण है और कौन गुणी है। अगर तंतु और तंतु रूप लेते हैं तो तंतु रूप गुण होता है और तंतु जो है वह गुणी होता है। क्यों? क्योंकि तंतु रूप तंतु में रहता है, इसलिए जिसमें गुण रहता है वह गुणी हुआ और जो रहता है वह गुण हुआ। तो तंतु इसी तरह से तंतु और तंतु संयोग में, तंतु संयोग किसमें रहता है, तंतु में रहता है, तो जिसमें रहता है वह संयोग का आश्रय हो गया ना, वह हो गया गुणी। तो वही कहते हैं कि तंतु संयोगस्य गुणस्य तंतु संयोग रूपी जो गुण है वह पट के समवायी कारण जो गुणी है तंतु, उस तंतु में समवेत है, माने समवाय संबंध से रहता है, और तो इसलिए समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात्। तो इस तरह से तंतु संयोग जो है वह तंतु रूपी समवायी कारण में प्रत्यासन्न रहता है, विद्यमान रहता है। और दूसरी जो शर्त है अवधृत सामर्थ्यम वाला, माने निश्चित रूप से कारणत्व रहे, तो निश्चित रूप से कारणत्व रहने का मतलब क्या है, जो अनन्यथा सिद्ध हो, नियत हो और पूर्वभावी हो, उसी में निश्चित रूप से कारणत्व रहेगा ना। कहा कि ये तीनों चीजें इसमें हैं, वही कहा अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावित्वेन, माने पट के प्रति जो है तंतु संयोग में अनन्यथा सिद्धत्व भी है, नियतत्व भी है और पूर्वभावित्व भी है, इसलिए पटम प्रति कारणत्वाच्च। इसलिए पट के प्रति तंतु संयोग जो है वह असमवायी कारण है। इस तरह से असमवायी कारण का लक्षण और असमवायी कारण का उदाहरण भी बताया, एक दूसरा भी उदाहरण बताते हैं, एवं तंतु रूपम पट रूपस्य असमवायी कारणम, कि तंतु का जो रूप है वह पट रूप के प्रति असमवायी कारण है। पट रूप हो गया कार्य, तंतु रूप हो गया कारण, तो पट रूप रूपी कार्य के प्रति तंतु का जो रूप है वह असमवायी कारण कहलाता है। इस तरह से असमवायी कारण के इन्होंने दो उदाहरण दिए, एक उदाहरण दिया पट के प्रति तंतु संयोग असमवायी कारण है, और दूसरा दिया कि पट रूप के प्रति तंतु रूप जो है वह असमवायी कारण है। अब तंतु संयोग कैसे असमवायी कारण है उसको तो पहले बताया गया, अब तंतु रूप कैसे पट रूप का असमवायी कारण है यह आगे जो है ना इसको क्लियर किया जाएगा अगले पाठ में।